त्रिपुरी माथुरी गोष्ठवासी राधा कुंडम गिरीवर महो राधिका माधवासा प्राप्त यश प्रथिति कृपया श्री गुरु वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाज्ञा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमाह कृष्णे तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां शरणागति वैराग्य युग भक्ति रसं प्रयत्नै अपायन मानु भुक्ष मंदम कृपाम्बुदीर्य पर दुख दुखी सनातन स्तम जयते जन निवासो देव की जन्म बाधो यदुवर परिषद परिद्रिचर ब्रज निघ्नग्न सुस्मित श्री मुखेन ब्रजपुर वनितान वर्धयन कामदेव जयति कामदेवम कामदेव कृष्ण की जय हो। वो कृष्ण जयजुक्त हो जो प्राणी मात्र के हृदय में जीव मात्र के हृदय में निवास करते हैं। अच्छा जो हम बोल रहे हैं ये इसका ये चल रहा है वहाँ ऑटोमेटिक रूप में हो रहा है ठीक। जो जीव मात्र के हृदय में निवास करते हैं जो जीवों के आश्रय हैं जन निवास निवास माने आश्रय होकर के भी देवकी के गर्भ में जन्म ग्रहण करते हैं यह केवल बाध है प्रसिद्धि मात्र है। यदुश्रेष्ठ लोग जिनके सेवक हैं परिकर हैं पांडव इत्यादि के द्वारा जो दैत्य विनाश के छल से अधर्म का विनाश करने वाले हैं जो स्थावर जंगम संसार दुख कितने प्रकार के सब दुखों को हरण करने वाले हैं जो अत्यंत सुंदर मृदुहास्य किस्से के द्वारा सब समय सुशोभित रहते हैं ऐसे जो मुख कमल उनके हैं जिसके द्वारा ब्रजवासियों के और पूर्व वनिताओं के काम को प्रेम को वर्धन करते हैं वे कृष्ण वे कामदेव जय युक्त हो। यह साधारण रूप में इसका अर्थ कृष्ण हु इज कामदेव and by his beautiful smiling face he is increasing simulating the calm the prem of all the gopis of all the wives of Dwarka and Mathura Puri and those who is living in all hearts each and every jivas of the whole whether conditioned soul or liberated soul and those who is the asya abode of all jivas but even he has come from the womb of mother Devaki all the jadvars are his associates. And by Pandavas, through Pandavas, he has what? He has destroyed all the demons. And then established dharma. And those who taking all kinds of sufferings of whole world, whether they are small or giant, whether moving or moving, like trees, creepers, like birds, like men, God says, and everyone. So he should be jai, unki jai ho. अब सनातन गोस्वामी जी की टीका पर्व हम लोग चल रहे हैं। जयति जन निवासो महाराज परीक्षित अपनी मैया से ये कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? जबकि अब सांप काटने वाला है, तुरंत अभी काटने वाला भी मरने वाले हैं, और सांप जब तक नहीं आ रहा है तब तक कुछ समय में सुखदेव गोस्वामी चले जाते हैं और उनकी मैया है, और मैया कहती है कि हम स्थूल बुद्धि वाली, स्त्री बुद्धि वाली, हमको ऐसे सरल सहज रूप में जो कुछ सुनाया है परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी ने, आप तुमको सुनाया सुखदेव गोस्वामी ने, हमारे समझ में कोई तत्व ज्ञान नहीं आया, आप इसमें से सार तत्व निचोड़ कर सरल सहज शब्दों में मुझे बतलाइए। उसमें बड़े प्रसन्न हो गए और वो मूक होने वाले थे, मौन साधन करके भगवत चिंतन करने वाले थे, किंतु बाचाल हो गए, उनकी जिह्वा लंपट बन गई भगवान का गुणानुवाद करने के लिए, और उस समय में अपनी मैया को ये कह रहे हैं। अब तक उन्होंने परीक्षित महाराज जी को, ने अपनी मैया को सामान्य रूप से और विशेष रूप से समस्त गोपियों का महात्मा, गोप गोपियों का, ब्रजवासियों का महात्मा वर्णन किया। जरा बोल दीजिए न, फिर हमको डबल बोलना पड़ेगा तुरंत। अब देरी करता, जल्दी दो। अभी द्वितीय इसका जो अध्याय है और पहला अध्याय, उसका सार निकालते हुए ये निष्कर्ष निकला, कृष्ण के प्रति जितने प्रकार के प्रेम हैं और आराधना है, उसमें गोपियों की आराधना श्रेष्ठ है, इसलिए गोपियों के भाव से यदि कृष्ण को उसी रूप में यदि सेवा की जाए, गोपियों के अनुगत्य में कृष्ण को प्राण बल्लभ समझकर, इसे बढ़कर के कोई श्रेष्ठ सेवा नहीं हो। इसलिए प्राकरांत रूप में परीक्षित महाराज ने अपने मैया को भी निर्लज्ज होकर के, और मैया भी निर्लज्ज होकर के सुन रही है, और उन्होंने बतलाया कि तुम गोपियां जैसे कृष्ण को प्राण बल्लभ समझ करके उपासना करती थी, तुम भी उसी के अनुगत्य में वैसे ही उपासना करो, ये भी बतलाया। अब जो कुछ बतलाया, अब सबका साथ एक श्लोक में गागर में सागर की भांति भर रहे हैं, उसी को ये सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं। परिचय से मंगलाचरण के रूप में भगवत महात्मा गान के द्वारा निज गुरु सुखदेव न्याय उपसंहार कर दे। जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने दशम स्कंध तक कृष्ण के लीला चरित्र वर्णन किया, विशेष करके गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत और ब्रज की लीलाओं का बड़ा मधुर रस से वर्णन किया, वर्णन करके अंत में द्वारका लीला का वर्णन किया, और उसमें भी कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में आए तो गोपियों के प्रेम को उन्होंने वर्णन किया, जो कैसे यशोदा मैया, नंद बाबा और गोपियां मिली और कृष्ण को अपने मनोरथ पर चढ़ा करके वृंदावन लाने की चेष्टा की और कृष्ण को उलाहना दिया। अंतिम श्लोक में आहुष्यते ननिर नाभ पदारविंदम जोगेश्वरई हृदि विचिंत मगाध बोधई संसार को पतितो चरणावलंबम गेहम जुसाप मनस्याद्या। कृष्ण समझ गए, उन्होंने कृष्ण को उलाहना दी, हे गुरु घंटाल आपके जैसा गुरु आप कोई नहीं मिलेगा, हमको ऐसी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं जिसमें हमारा सूर्य के समान ताप से हम लोगों का ये हृदय रूपी जो कमल है ये भी सूख रहा, ऐसी शिक्षा की जरूरत नहीं। जो संसार कुप में फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए ये सब शिक्षाएं हैं, हम लोगों के लिए नहीं। हम तो आपको भूल जाना चाहती हैं, भूल नहीं पाती और अपने आप पर स्मरण होता रहता, हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हमारा स्मरण करो, हम तो आपको भूल जाना चाहती हैं, इत्यादि उलाहना के रूप में दिया। अंत में उपसंहार सुखदेव गोस्वामी उस लीलाओं का कर रहे हैं 90 अध्याय में, अंतिम अध्याय में दशम स्कंद के। वो क्या करें, जयति जन निवासो देव की जन्म बाधो जदुबर परिषद सर दुर्भिरक्षन न धर्मन श्रीचर ब्रिज नग्न सुस्मित श्री मुखे न ब्रजपुर बनितानंग। कृष्ण के बाल चरित्र से लेकर और जितनी लीलाएं हैं उसको उपसंहार में थोड़े से में वो सब कुछ भर रहे हैं, उसको सनातन गोस्वामी जी कैसे वर्णन कर रहे हैं। दशम स्कंद के अंत में भगवान सुखदेव भी एक गंडूस से, इतने में गंडूस में लौन समुद्र को जैसे अगस्त जी पान करने के लिए उठा और ऐसे उठाकर ऐसे किया और सारा समुद्र एकदम सूख गया, ऐसे अगस्त जी जैसे कर रहे हैं उन्हीं की भांति अब ये सुखदेव गोस्वामी अंत में जो किया और परीक्षित महाराज उसी प्रकार से क्या कर रहे हैं। कृष्ण चरितामृत महासागर, कृष्ण का चरित्र जो लीला चरित्र है ये कैसा है, विशेष करके दशमें स्कंद में वर्णित कृष्ण की जो बाल लीलाओं से लेकर के और मधुर रस तक, विशेष करके उद्धव संदेश तक जो लीलाएं हैं वो कृष्ण चरित्र की अगाध और सीमा रहित महासागर है, उसको पान करने के लिए गंडूस में अतत विचित्र ग्रंथ कोटि वर्णित, कोटि कोटि ग्रंथों में जो वर्णित कृष्ण की जो निखिल लीलाएं हैं संक्षिप्त में सार स्वरूप में अब हाथ में लेकर के पीना चाहते हैं और इस तरह से उपसंहार करना चाहते हैं। कौन, उदत्त परीक्षित सुखदेव गोस्वामी और उनको जो उन्होंने भागवत सुनाया परीक्षित महाराज अब उसका साथ निगम कल्पतरु गलितं फलम तो ही है, ये श्रीमद भागवत निगम कल्पतरु का सार है, उसमें छिलके और गुठली और रेशे नहीं है किंतु उसका भी सार ले रहे। ये कृष्ण लीला कैसी है, सीमा रहित अगाध अनंत ये महासागर है, उसको एक गंडूस में पान करना चाहते हैं। कहते बड़े आनंद के साथ में उपसंहार करते हुए कह रहे हैं जय पिते, अपने गुरु जी का ही जूठन महा 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 प्रसाद, उनके गुरु जी कौन है, सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं, उसका जूठन महा महा प्रसाद के रूप में जय तिजे जन निवासो देव की जन्म बाधो इत्यादि का वर्णन कर रहे हैं। ऐसे जो कृष्ण हैं जो लीला वारिद हैं उनकी लीलाएं अमृत से भी अधिक टेस्टफुल हैं, स्वाद युक्त हैं, ऐसे जो कृष्ण हैं ये जय युक्त हों। यहां पर पूर्व श्लोक पहले का श्लोक इसमें है 10:43 नहीं ये नहीं 10:48 है, उसके पहले का जो श्लोक है इसमें कृष्णस्य एक शब्द है, अब वो कृष्णस्य को लेकर के, अब वो लेकर के जयति कामदेवम उस कृष्ण के लिए यहां पर वर्णन कर रहे हैं। यहां पर जो जन निवास जो शब्द का व्यवहार हुआ है, यू वॉन्ट टू हियर जस्ट नाउ और यू वॉन्ट टू हियर आफ्टरवर्ड, तो यू शुड टेल। जन निवास, जन माने जितने जीव हैं, और निवास का तात्पर्य है आश्रय, समस्त जीवों के आश्रय हैं। आश्रय नहीं है आधार, जिससे जीव सब पिछुरित होते हैं और सब उसी में रहते हैं, वो जन निवास है। अथवा जन में जो निवास करने वाले हैं, जन माने समस्त जीवों के अंदर में अंतर्यामी इत्यादि के रूप में निवास करते हैं, और सारे जीव जिनके सत्ता के अंदर में हैं, ये दो अर्थों में ही ये जन निवास। इसलिए वे जीवों के अंतर्यामी होकर के उनके हृदय में निवास करते हैं, अथवा जीव सभी उनके अंदर में वास करते हैं, जैसे प्रहलाद जी ने कहा था या देखा, अपने आराध्य देव को अपने भाव से भगवान में सब जीवों को अवस्थित देखते हैं और सब जीवों में भी भगवान को दर्शन करते हैं। ये हुआ तो जन निवास। और जन में होता है स्वजन, ये मेरे निजजन है, निज जने गणनां विधेहि, अपने गणों में अपने जनों में हमें गणना कीजिए। तो निज जने माने क्या, स्वजन माने क्या, स्वज माने अपने भक्तगण, जो अपने भक्तगणों के हृदय में निवास करते हैं। कैसे निवास करते हैं, भक्ति के तारतम्य से उनके हृदय में वो निवास करते हैं। वे साधारण अभी जो भजन कर रहे हैं उनके भी हृदय में, जो भजन नहीं करते हैं उनके हृदय में तो अंतर्यामी रूप में ही हैं, साक्षी के रूप में, और जो अपने भक्त हैं जैसे दुर्वासा के हृदय में रहते हुए भी, वो अम्बरीश महाराज के हृदय में जो हैं वो तारतम्य है। वहां पर दुर्वासा के हृदय में अंतर्यामी रूप से हैं, और अपने जो निजजन अम्बरीश महाराज हैं उसके रक्षक रूप में, उनका पालन पोषण करने वाले के रूप में, और वो जैसे राम के जितने भी भक्त हनुमान जी के ही हृदय में भी हैं, और उससे अधिक ब्रज के जो भक्त लोग हैं, दास भी हैं उनमें अधिक, उनसे भी अधिक कृष्ण अपने सखाओं के हृदय में, क्योंकि वो अपने निजजन हैं, इन सखाओं से भी अधिक मैया यशोदानंद बाबा के हृदय में, और उससे भी अधिक उनका कौन सा जन है, गोपियां हैं, उन गोपियों के हृदय में निवास, उनके हृदय में स्वयं निवास करते हैं ऐसे भक्तों के, और साधारणों के हृदय में भगवान में वो निवास करते हैं और कृष्ण से स्वयं निवास करते हैं ऐसे भक्तों के हृदय में। अतएव अपने भक्तों के निजजनों के हृदय में निरंतर स्फूर्ति प्राप्त होते हैं साधारण लोगों के हृदय में, जब कृष्ण भी मिल गए, और गोपियों के साथ में स्वयं आ जाते हैं, वहां स्फूर्ति नहीं, वो समझती हैं स्फूर्ति, किंतु वो साक्षात रूप में वहां पर आते हैं। जैसे कहा है ना, अरे नहीं नहीं, सब समय कृष्ण उनके मनोरथ में चढ़े रहते हैं, उरुक्रम चित्त जाना, दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंखनाद उदितो ओखन मार्जनादौ गायन्ति चैनम अनुरक्त धियो अश्रुकंठा धन्या ब्रजस्प्रिय उरुक्रम चित्त जाना। उरुक्रम चित्त जाना, उरुक्रम के चित्त पर चढ़ी हुई है, या उरुक्रम जिनके चित्त पर चढ़े हुए हैं वो उरुक्रम, तो ऐसे ही समझो जैसे फूर्ति स्फूर्ति को समझते हैं, कभी स्फूर्ति नहीं स्वयं आ जाते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं किंतु स्फूर्ति मानती हैं। बाहर में अगर अवतार के रूप में आते हैं साधारण जनों के लिए और अपने प्रिय भक्तों के लिए कृष्ण के रूप में, और उससे भी प्रिय के लिए किस रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, राधा जी भाव और कांति लेकर के आते हैं। इसके द्वारा कृष्ण का परब्रह्मत्व, परमात्मत्व, सर्वसरेश्वरत्व, सर्व अवतारी बीजत्व इत्यादि सभी जन निवास के अर्थ में सभी कुछ आया। ऐसे कृष्ण की जय हो, जयति कृष्णो, ऐसे कृष्ण। दूसरों के हृदय में परमात्मा के रूप में, सर्वेश्वर अपने भक्तों के हृदय के रूप में, और उससे भी अवतारी बीज जो हैं कृष्ण या महाप्रभु अपने विशेष जैसे गोपियां हैं उन लोगों के हृदय में इस रूप में हैं। इसलिए सभी कुछ कहा गया ये केवल जन निवास शब्द के द्वारा, ऐसे कृष्ण की जय हो। और उन्हीं उन्हीं स्वरूपों में ऐश्वर्य आदि का अत्यंत चरम काष्ठा, पराकाष्ठा, इन सभी रूपों में परमात्मा रूप में उससे भी अधिक, ब्रह्म रूप में उसके बाद में परमात्मा रूप में उससे भी अधिक, भगवान स्वयं भगवान, ये इस रूप में ये चरम काष्ठा। जैसे द्वारका ने कुछ ऐश्वर्य प्रकट किया, ब्रह्मा इत्यादि को दिखलाया, कोटि कोटि ब्रह्मा को दिखलाया, एक ब्रह्मा को, 16 मुख वाले, सहस्त्र मुख वाले, करोड़ मुख वाले, अगिनत मुख वाले वो प्रणाम कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी को घर में वो कौन सुधर्मा सभी में प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं मिला, देखते ही रह गए। तब कृष्ण ने मुस्कुरा दिया, सब जब हट गए तो ब्रह्मा जी आकर के ये सब ऐश्वर्य। इसे भी बढ़कर के मथुरा में, और मथुरा से भी ऐश्वर्य दिखलाया, छोटे बालक रूप में गोवर्धन को धारण करके, कालियों को नथ करके, उसे छोटे शिशु रूप में ये सब ऐश्वर्य सब कृष्ण ने दिखलाया। ये बैकुंठ में सबसे ऐश्वर्य है, गोलोक में उससे भी अधिक है, गोलोक से अधिक द्वारका में है, उससे भी अधिक मथुरा में, उससे भी ऐश्वर्य अधिक कहाँ है। किंतु ये सब माधुर्य के द्वारा क्रमशः घटता आया है। मथुरा में उनका इतना बड़ा ऐश्वर्य ढक गया है किस से, एकदम चुड़ांत माधुर्य के द्वारा, इसलिए वहां पर अनुभूत तो नहीं होता। उससे कम यद्यपि मथुरा और द्वारका में है, किंतु कुछ कुछ अनुभूत होता है वो, किंतु है अधिक गोलोक से भी। और बैकुंठ में माधुर्य का कोई छाया नहीं रहने से, भाव नहीं रहने से, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य दिखाई पड़ता है। जैसे हमारे सामने 1 किलो नमक रख दिया जाए तो अधिक मालूम होगा ना, हम नहीं खा सकेंगे। वही एक कुएं में 1 किलो घोल दिया जाए तो कुएं का क्या बिगड़ेगा, उसे हम पानी पी लेंगे तभी नहीं लगेगा। और उसी 10,000 मन को हिमालय में गंगा के वहां पर यदि गंगोत्री में ढोल दिया जाए, लाखों मन, और वो गंगा में आता हुआ बहता हुआ आता, किसी को लगेगा। तो इसी तरह से क्रमशः समझना चाहिए, लोक में नारायण धाम में ऐश्वर्य अधिक, माधुर्य अत्यंत कम, नहीं के बराबर। गोलोक में ऐश्वर्य उससे भी अधिक, किंतु वहां पर माधुर्य कुछ अधिक होने से ऐश्वर्य कुछ ढकता है। उससे भी द्वारकापुरी में, किंतु द्वारकापुरी में कुछ अधिक माधुर्य, उससे भी अधिक माधुर्य मथुरा में, और उससे भी अधिक माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों होने पर भी माधुर्य के द्वारा ब्रज में इसकी अनुभूति नहीं की। ऐसी सब लीलाएं इन्होंने कृष्ण ने की है। इसके द्वारा ऐश्वर्य इत्यादि की पराकाष्ठा, विशेष करके साक्षात प्रकट के द्वारा देवकी जन्मवाद देवकी है ते जन्म ग्रहण कर दिया छिन्न, देवकी के द्वारा जन्म ग्रहण किया, इसके द्वारा ख्याति लाभ हुआ। ये देवकी का पुत्र कंस को मारा, जरासंध को मारा और सब लीलाएं की। वही मथुरा से गोकुल में गए और वहां पर लीला की, यशोदा मैया ने वहां पर उनका पालन पोषण किया, ऐसा मालूम हो रहा है। किंतु और एक देव देवकी है, कौन देवकी? यशोदा मैया जो देवकी हैं, उनके गर्भ से जो निकला वो मथुरा नहीं गया, द्वारका नहीं गया। कृष्ण हुटूक बर्थ फ्रॉम द वॉम्ब ऑफ देवकी, ही वॉज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, पार्ट पार्ट नॉट पार्सल पार्ट, बट दोज हुटूक केम फ्रॉम द वॉम्ब ऑफ यशोदा मैया, हिज अदर अनदर नाम वॉज सर नेम वॉज ऑल्सो देवकी। तो वो जो देवकी हैं, वो वहां पर जन्म नहीं ग्रहण किया, वो गोकुल में जन्म ग्रहण किया और वो वही वृंदावन को छोड़कर के कहीं नहीं जाता। तो ये दोनों के रूप में जो प्रसिद्ध हैं, विशेष करके जन्म लेने के वजह से मथुरा की सारी लीलाएं और गोकुल में जो आए, गोकुल में जो जो देवकी अर्थात यशोदा जी के गर्भ से जो पैदा हुए, वहां पर जो अपूर्व लीलाएं जो हुई, मधुरमयी जो लीलाएं हुई, उसमें कृष्ण कैसे पुतना को मारा और अपना माधुर्य स्वरूप ठीक रखा, जो यशोदा मैया कितनी भयभीत हो गई, दामोदर जी की लीलाएं दिखलाएं, वो सुरहिनी फल बिक्रैनी को कैसे दया की, इसके बाद में दामोदर लीला, उसके बाद में वृंदावन में आए वो सब लीलाएं, इसके बाद में रास लीला तक वहां की सब लीलाएं वृंदावन में, और इसके बाद में नारद जी से भेंट के बाद में ब्रह्मासुर के वध के बाद में फिर मथुरा में आए, यहां पर कैसी कैसी सब उन्होंने जो लीलाएं की, ये सब लीलाओं का वर्णन इसी में आता है। देवकी जन्म भादव तथा अपने जन्म के प्रसंग में वर प्रदान आदि परम कारुणा सूचक अपूर्व वृतांत कथन देखिए। और वसुदेव जी को कहा, तुम लोगों ने कश्यप अदिति के रूप में हमारी बहुत आराधना की, लाखों वर्ष निराहार रह करके। उस समय मैं जब प्रसन्न होकर गया तो तुम लोग कहा जो वर मांगो, तो उन्होंने वर मांगा आप ही जैसा बेटा हमको हो। तो उन्होंने कहा भगवान ने जैसे हमारे जैसा तो कोई है नहीं, तो मुझे ही आपके बेटे के रूप में आना पड़ेगा, याद है? कहते हैं उनको याद आ गई, हाथ जोड़ करके स्तव स्तुति करने लगे और सारी चीजों का स्मरण कराया वहां ने? इस प्रकार से ये करुणा उनकी सूचित होती है। ऐसे जो करुणाशील जो कृष्ण हैं, उनकी जय हो। और क्या, अतपर परमेश्वर्य पराकाष्ठता विस्तार जदुबर परिषद, जदुबर जिनके परिषद हैं। जदुबर माने कौन? जदु में बर कौन है, श्रेष्ठ कौन है? अक्रूर को रख लीजिए, इनसे भी श्रेष्ठ उद्धव हैं, इनसे भी श्रेष्ठ उग्रसेन इत्यादि हैं, ये जदुबर। तो ये जदुबर परिषद सुधर्मा सभा इत्यादि में कंस के मारने के बाद में ये मथुरा में ही राज्य नहीं दिया, उग्रसेन के ऊपर में सब दे दिया। कैसी करुणा अपने भक्तों पर, कैसे ये करुणा करते हैं, है ना? ये करुणा दिखलाई। और द्वारकापुरी में कैसी कैसी करुणात्मक लीलाएं जो की हैं, उनको जदुबर परिषद। अथवा और चलो आगे तो जदुबर माने जदु के वंश में, जदु के बाद में एक राजा हुए, उनका नाम था नहीं और आगे बाद में जदु के वंश में हुए, उनकी दो स्त्रियां थी, एक स्त्री से अजामीर या क्या नाम देव नहीं अजामीर ही देवमीर, उनकी दो पत्नियां, एक से गोपी पत्नी और दूसरी थी क्षत्रियाणी। क्षत्रियाणी से सूरसेन हुए और गोपी के गर्भ से नंद बाबा के पिताजी परजन्य जी हुए। ये दोनों भाई लगते हैं, माताएं दो हैं किंतु दोनों एक ही पिता के औरस पुत्र हैं। अब ये दोनों ही जदु के वंश में होने के नाते परजन्य बाबा का जो वंश नंद इत्यादि है ये, और उधर में जदु के वंश में सूर्यसेन से वसुदेव देवकी इत्यादि आते हैं। ये दोनों ही परिषद हैं, परिकर हैं जिन कृष्ण के। यहाँ पर जदुवर परिषद ये दोनों का भी आया, अर्थात जदुओं की सभा में जदु लोग जिनकी सेवा करते हैं, जदुवर लोग उनके परिकर होकर के जिस कृष्ण की सेवा करते हैं, और नंद बाबा के घर में यशोदा मैया लाल लड़ाती है, सेवा करती है। कैसे? कान मरोड़कर, कभी हाथ बांधकर, कभी नटखट बंदर बंधो इत्यादि शब्दों के द्वारा। और आगे बढ़ जाओ तो गोपियां जो और जो जदु परिषद में जो यशोदा जी की और सब कौन है, नहीं नहीं अरे ठहर, राधा जी क्या लगती हैं, कृष्ण के समान वो भी प्यारी हैं। तो ये जो गोपियां हैं कृष्ण से अपने पैरों को दबवाती हैं, वो गोपियां कृष्ण को अपने पाद संवाहन इत्यादि कार्य में लगाती हैं। कभी कभी राधिका जी अपना चर्बित तंबुल भी उनके मुख में देकर के सेवा करती हैं। कैसी कैसी ये सब सेवाएं करती हैं, इसकी पराकाष्ठा है। कोई कैसे कृष्ण प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं, उनकी सेवा भी करने लगते हैं, और कभी कभी द्वारकापुरी में वो सेवा लेते हैं। तो ये दोनों ही आया जदुवर परिषद। जा धर्मेंद्र होने के नाते जदुकुल के द्वेष करने वाले कंस जरासंध और पांडवों का द्वेष करने वाले दुर्योधन कर्ण दुशासन और यहां तक कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को भी, इनका अंत कराने वाले कौन थे? कृष्ण थे। स्वयं दौर्भिरश्चन अपने हाथों से, उनका हाथ कौन है? भीम है, अर्जुन है, इनके द्वारा असुरों का विनाश करके धर्म की प्रतिष्ठा की। कंस जरासंध इत्यादि का स्वयं वध किया और अपने परिकरों के द्वारा जरासंध का दुष्ट गुणों को वध करके जो निज जने दुखहानि, दुखहानि माने क्या, उनके दुख को दूर किया और सुख प्राप्ति का कारण बने, विशेष करके गोपियों के बृहद दुख को जिन्होंने दूर किया, यह असुर से भी भयंकर उसको उन्होंने देकर के उनके इस दुख को बृहद दुख का अपनोदन किया। ऐसे करुणाशील जो कृष्ण हैं, ऐसे कृष्ण जय युक्त हो। अथवा फिर कह रहे हैं थोड़ा सा सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, मैं भी उसमें नमक मर्च थोड़ा सा लगा करके और थोड़ा सा बतला रहा हूं। गोपियों का ये चित्र है, इसमें उन्होंने जानबूझ करके ओझल रखा है, तो थोड़ा सा मैं और इसको प्रकट कर। आप यू वांट टू हियर समथिंग? बाय। जदुवर कहने से जो पहले कहा उसका फिर व्याख्या करके बतला रहे। जदुवर, जदुराज उग्रसेन के परिकर, परिषद। परिषद कहां थी? परिषद कहते हैं सभा को, वसुधर्मा नामक सभा थी। देव सभा उपलक्षणे पारिजात्य इत्यादि देवभोग्य पदार्थ को भी समझना हो जाएगा। क्या जगर कहने से ऐसा समझिए, उग्रसेन का जो की सभा थी, जो इच्छा अनुसार से कृष्ण की इच्छा से लंबी चौड़ी हो जाती, लाखों लोग उसमें समा सकते और चाहते तो उसमें 10-20 आदमी रहे। उसमें गर्मी के समय में शीत, शीत के समय में गर्म, और सब प्रकार के सुखों से संपन्न वो सुधर्मा सभा थी। उसको ले आए कहां से? स्वर्ग से। लोगों को परास्त करके, समस्त देवताओं को परास्त करके ले आए, इसलिए यहां पर देव शब्द का उसमें समावेश है। और करके क्या किया? ले आकर के सत्यभामा के घर में पारिजात को लाया और सुधर्मा को ले आकर के इनको उग्रसेन महाराज जी को दे दिया। अपने कुछ भोग नहीं, वो पारिजात पुष्प ले आया तो किसको दिया? सत्यभामा को, और सुधर्मा सभा इनको दे दी। राज सारा दे करके कृष्ण ने कहा मैं आपकी क्या सेवा करूं? उग्रसेन जी दे रहते क्या उत्तर दूं, नहीं कुछ समझ सके, भोले भाले बन गए। तो ये पारिजात इत्यादि को ले आया है, वो सब कथाओं को इसमें ले लो। कृष्ण की ऐसी जो कथाएं हैं, ऐसे जो लीलाएं कृष्ण ने की उनकी जय हो। और सर्वदेव पराजय द्वारा लाभ, और समस्त देवताओं को उन्होंने परास्त कर दिया कृष्ण ने। कब? जब पारिजात को हरण कर रहे थे, सुधर्मा सभा को ला रहे थे, तो इंद्र ने अपने बेटे को भेजा जयंत को, और उससे कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे युद्ध हुआ आकाश में, उन्होंने प्रद्युम्न ने उसे हरा दिया और कृष्ण ने इंद्र को हराया, और सबके देखते सामने ही एकदम ऐसे ही उन्होंने समस्त देवताओं को, उसमें शंकर को और सब देवताओं को जितने हैं, सब कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं, तो इसे कार्तिकेय का भी पराजय समझो। गणेश जी भाग उठे, बड़ा स्थूल शरीर सूर्य को घुमा नहीं सके उस युद्ध में, सब लोगों को परास्त किया ने? ये सब लीलाएं कृष्ण की लीलाओं में हैं। ये सब समझो, यहाँ सब देवताओं का पराजय, ये क्या है? परम ऐश्वर्य। और कृष्ण की ये महिमा है, ऐसे महिमा युक्त जो कृष्ण हैं उनकी जय हो। निजर और निज जन द्वेषकारी कंस पिता उग्रसेन को राज्य और सुधर्मा सभा प्रदान किया, और परम कारुण्य, इसके द्वारा परम करुणा जी अपने भक्तों को सर्वस्व दे देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते, इसलिए कृष्ण की करुणा होती है। इसलिए भक्तों पर करुणा करने के लिए अत्यंत उत्कंठित रहते हैं ये कृष्ण। इसलिए तुम लोग निराश मत हो, यदि उनके शरणागत हो जाओगे तो कृष्ण दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु, यहाँ तक कि गोपी भाव को भी श्रीमती राधिका जी के कह करके उनसे भी दिला सकते हैं। अपने तो नहीं देंगे, किंतु उनसे कह करके प्रिया जी से दिला सकते हैं। ऐसे ये करुणाशील हैं, इनकी जय हो। आज यहीं तक रहे, और कल हम इसके बाद में व्याख्या करेंगे। अभी जा करके इनको सुना देंगे, और अभी कीर्तन होकर के आती है। कृष्णदास जी एक बहुत सुंदर कीर्तन करो, जो सभी लोग कर सकें। जय कुंज बिहारी।